पहले धन्यवाद करूंगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए. दूसरा, जैसा हमारा नेम सजेस्ट करता है, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे ही हमने ये नाम लिया थिंकिंग, तो कोई थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आ गया. ठीक है, तो दैट इज थिंकिंग. थिंकिंग मतलब कि हमारा जो रूटीन वर्क है, हमारी डेली एक्टिविटीज हैं, उसमें हम ये थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा हम इस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं. अगर मैं बात करूँ तो हम अगर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो एक बहुत छोटी और रूटीन समस्या के बारे में सोचते हुए और उसके समाधान पे आते हुए हम बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के बारे में भी सोचते हैं और उनके सॉल्यूशन पे आते हैं. फॉर एग्जांपल, एक बहुत रूटीन हमारी कैसे शुरू होता है, सपोज कि आज मुझे ऑफिस किस वक्त पहुंचना है, आज मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, आज मेरी मॉर्निंग असेंबली जल्दी है तो मुझे आज 8 बजे स्कूल पहुंच जाना है. तो दैट मीन्स हमारा एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, थिंकिंग चल रहा है, और उस थॉट प्रोसेस के बेसिस पे हमारी जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जैसे हमारी प्रॉब्लम है कि हमें 8 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाना है, रोज़ हम 9 बजे पहुंचते हैं, आज हमें 8 बजे पहुंचना है, तो दैट मीन्स उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढे, वही थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग है. और ये एक कुछ ऐसी हमारे जिसे कहते हैं इनडिस्पेंसिबल एस्पेक्ट है, हम कभी भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से. व्हेन एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स अराउंड अस. दोज प्रॉब्लम्स में भी रूटीन प्रॉब्लम्स और मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे. देखिए, जैसे मैंने थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कही, वो तो एक जनरल एस्पेक्ट हो गया कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, कैसे चलता है, और हम किस तरह से अपने थॉट प्रोसेस के बेसिस पे कोई भी चीज़ को अपने अराउंड जो है वो सॉल्व करते हैं. लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं. कॉम्पोनेंट्स मतलब हम किस चीज़ के बारे में किस तरह से सोचते हैं. हम एक रूटीन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आज मुझे जाना कैसे है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मेरी कुछ अलग थॉट्स होंगे, वहाँ जाके प्रेजेंटेशन कैसे देनी है उसके लिए अलग थॉट्स होंगे, आज सुबह उठ के तैयार कितने बजे तक होना है उसके लिए अलग थॉट्स होंगे. मतलब हमारा जो थिंकिंग है वो एक जनरल प्रोसेस नहीं है, उसमें डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व हैं. अब वो क्या कॉम्पोनेंट्स है, सबसे पहले हमने डिवेलप कैसे किया सोचना. तो जब एक छोटा बच्चा होता है तो आप कभी देखना, आपने कभी सुन, एक कॉन्सेप्ट्स एक कॉम्पोनेंट है, 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसके. एक होता है कॉन्सेप्ट्स, एक होता है स्कीमास, और एक होता है मेंटल इमेजरी. एक एक करके इसकी बात करेंगे. एक मैं आपसे जनरल सा एक एग्जांपल शेयर करती हूँ. अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आपने कभी उनको देखा होगा कि वो बच्चे क्या करते हैं कि अगर वो टीवी के पास खड़े हैं, पहले उनके उनको हम, क्योंकि हम जनरली बच्चों को बॉल देते हैं खेलने के लिए, तो क्योंकि बॉल राउंड होती है तो बच्चे सीखते हैं उससे खेलना. लेकिन कभी आप नोटिस कीजिएगा कि बच्चा क्या करता है कि उस बॉल को टीवी में जब वो देखता है तो टीवी में बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है जब छोटा बच्चा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता है, बट उसे पता उसे हाथ से पकड़ा जा सकता है. इसी तरह से जब बच्चे बैठने शुरू करते हैं, आप कभी नोटिस करना, अगर आपने अपने घर पे चादर बिछाई है, बच्चे बैठे हैं बेड पे, तो वो क्या करेंगे कि चादर में अगर फूल लगे हैं ना तो वो उन फूलों को निकालने की कोशिश करेंगे. मतलब बच्चा जो है वो अपने लाइफ के अर्ली स्टेजेस में ही किसी ना किसी तरह से थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है और उस थॉट प्रोसेस के बेसिस पे वो बिहेव करता है. जैसे कि एक इन्फेंट की, एक बहुत छोटे बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, उसका पेट भूखा है और उसे भूख लगी है. ठीक है, तो अब उसे समझ आ गया कि उसका पेट भूखा है और उसे भूख लगी है, ये उसका प्रॉब्लम है. अब इस प्रॉब्लम के बारे में उसने सोचा और उसने अपने रूटीन एक्टिविटीज से ये रियलाइज कर लिया कि अगर मैं जोर से रोऊंगा तो मुझे दूध मिल जाएगा, तो दैट मीन्स वो थॉट प्रोसेस चला और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया. तो आप सोचिए कि मैं तो ये बात कर रही हूँ कि अपना करियर कैसे चूज करना है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, या आज सुबह आपको खाने में क्या बनाना है, ये बहुत जनरल प्रॉब्लम है. लेकिन ये हम लोगों की प्रॉब्लम है. वो जो छोटे बच्चे जो कभी नहीं किसी चीज से इंटरेक्ट कर पाए, उन्हें भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी ना किसी तरह
से करनी पड़ती है.
वो कभी अपना बिस्तर गीला कर देते हैं तो वो रोते हैं क्योंकि वो इरिटेट होते हैं, तो उन्हें पता है मैं रोऊंगा करूंगा तो ये एक
डायपर चेंज हो
जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये एक सिग्नल है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि बच्चे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, तो आप शुरू में उन्हें कोई भी गोल चीज देंगे, हम आगे भी बात करेंगे इसकी, तो वो हर एक गोल चीज को सबसे पहले अपने मुंह में डालना चाहते हैं. वो हर एक चीज को बच्चे जो है ना वो अपने मुंह में डाल के एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि अभी तक उनका वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ है कि कौन सी चीज किस कैटेगरी में आती है. जैसे कि अगर मैं कौन सी चीज किस कैटेगरी में आती है, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने एक छोटा पपी देखा, छोटा डॉग देखा, ठीक है, तो उनको हमने दिखा दिया कि ये एनिमल है. अब बच्चे ने तो पपी देखा, लेकिन वैसे ही वो किटन भी देख सकता है, एक बिल्ली का बच्चा देखेगा, तो बच्चे को तो डिफ्रेंशिएट नहीं करना आएगा. तो शुरू में क्या होता है कि बच्चे हर एक चीज का एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल एक एनिमल का एक कॉन्सेप्ट फॉर्म हो गया कि इस तरह की दिखने वाली चीज जो होती है वो एक एनिमल होता है,
एनिमल होती है,
ठीक है. उसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चा जो है वो क्या करेगा कि बॉल को मुंह में डालने की, जब अभी वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन स्टेज पे है तो वो हर एक राउंड चीज को अपने मुंह में डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मुझे इसको खाने को भी देते हैं. हम उसे कोई फ्रूट देते हैं वो भी राउंड होता है शेप में, तो उसे लगेगा अच्छा इसे भी मुंह में डाल के खा सकते हैं. तो उसी तरह से जैसे वो फ्रूट खाता है वैसे वो बॉल भी खाएगा. तो शुरू में क्या होता है, जैसे अगर मैं फ्रूट की बात करूं या मैं बॉल फ्रूट की बात करूं, तो बच्चा पहले एक एप्पल को देखेगा तो उसे लगेगा कि अच्छा ये गोल गोल दिखने वाली चीज है, ठीक है, या तो उसे फेंक के खेलने की कोशिश करेगा क्योंकि वो खेलता है किसी राउंड चीज से, या अगर उसका एक्सपीरियंस ज्यादा खाने का है तो वो बॉल को भी मुंह में डालने की, ठीक है. तो ये होता है कि ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ये कॉन्सेप्ट्स हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे डेवलप करते हैं
जी.
अब जो कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो हमारे एक मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं. सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई नई सिचुएशन को एनकाउंटर करते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, तो हम उस नई सिचुएशन पर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस पे
नतीजा
निकालने की कोशिश करते हैं. जैसे बच्चे का पास्ट एक्सपीरियंस किसी भी राउंड चीज के साथ खेलने का है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अगर एप्पल भी आप उसे पकड़ाओगे तो वो उसको फेंक के उससे खेलने की कोशिश
करेगा.
तो ये तो है कि एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में डेवलप हुआ है. अब ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट होते हैं मेंटल स्ट्रक्चर्स जो आपने अपने दिमाग में बना लिया. ये राउंड दिखता है तो इसका ये काम है, ये स्क्वायर दिखता है तो इसका ये काम है, ये नाइफ दिखता है तो इसका ये काम है, ठीक है. तो ये जो कैटेगरीज हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे जब हमारा एक्सपीरियंस होने लगता है चीज़ों का, तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे कैटेगरीज को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं. अब वो कैटेगरीज कैसे हुई, हर एक गोल दिखने वाली चीज बॉल नहीं है
जी,
ठीक है. हर एक जो छोटा एनिमल है, हर छोटा एनिमल जो है वो डॉग नहीं है, वो किटन भी हो सकता है. तो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्चुअली में हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं थिंकिंग के. हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझ के ही अपना थॉट प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ बॉल समझ के फिर मैं सोचूंगी, कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड समझ के मैंने कैटेगरी बना ली, ये वाला राउंड बॉल है और ये वाला राउंड जो है वो फ्रूट है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बिहेव करने शुरू करूंगी. अब ये कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम लोग अपनी जो नॉलेज है उसको सिस्टमेटाइज कैसे करें. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूं हाउस, ठीक है, तो हाउस ऐसी एक बिल्डिंग है जो एक ऐसी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है जिसके कॉमन फीचर्स हैं. अब एक हाउस में क्या हो सकता है, हाउस एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, उसमें किचन हो सकता है. आप खुद ही इमेजिन कर लेंगे क्योंकि आपने हाउस का एक कॉन्सेप्ट
बना रखा है
कि हाउस में ये चीजें होनी चाहिए, उसमें रूम्स होने चाहिए, उसमें किचन होना चाहिए, उसमें बेडरूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए. तो हाउस एक कॉन्सेप्ट बन गया और उसमें आगे क्या क्या होना चाहिए आपने कैटेगराइज कर लिया.
बिल्कुल.
अगर मैं आपसे बात करूं एक वर्ड की, जिस वर्ड का नाम है बिल्डिंग, तो आप बिल्डिंग और हाउस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि हाउस में तो रूम्स होंगे लेकिन बिल्डिंग ज्यादा जनरल वर्ड है. बिल्डिंग में फ्लैट्स भी हो सकते हैं रहने के लिए, ठीक है. बिल्डिंग में ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डिंग में ऑफिसेज हो सकते हैं,
ऑफिसेज, कोई मॉल हो सकता है,
मार्केट्स हो सकती हैं, शॉप्स हो सकती हैं. तो मतलब हमने क्या किया कि हमने पहले डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर्म किए, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हमने कैटेगरीज बनाई, और जो हमने कैटेगरीज कैसे बनाई, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस हाउस का क्या है कि वो लोगों के रहने के लिए है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बिल्डिंग के लिए क्या है कि मैंने कैटेगराइज कर लिया कि उसमें ऐसा नहीं होता कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ घर ही हो, उसमें मार्केट्स भी हो सकती हैं, ऑफिसर्स भी हो सकते हैं. अब इसका मतलब है कि जैसे बिल्डिंग जो है वो एक ज़्यादा जनरल वर्ड है. अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी एक्टिव, ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही बात करते हैं. कोई एक्टिविटी हो गई, कोई सिचुएशन हो गई, कोई आइडियाज हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए. लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी एनिमल कौन है, ह्यूमन बीइंग कौन है, ह्यूमन बीइंग में मेल कौन है, फीमेल कौन है, चाइल्ड कौन है, अडल्ट कौन है, ठीक है, वो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन बीइंग का. ह्यूमन बीइंग में हमने कैटेगरीज बना ली. उसी तरह से एनिमल का कॉन्सेप्ट है, एनिमल में डिफरेंट कैटेगरीज बना ली, डिफरेंट कैटेगरीज में भी कैटेगरीज बना ली कि पेट डॉग है, स्ट्रे डॉग है, या वॉच डॉग है. इस तरह से आगे भी हम इसकी बात करेंगे. अब जो ये मैं यही बात कर रही हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, ये इवेंट्स के लिए भी होते हैं. अब इवेंट्स के लिए कैसे होते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट बनता है एक गैदरिंग का, कि हम कहीं पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, तो इकट्ठा हुए तो दैट मीन्स कोई गैदरिंग है
हो रही है.
ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट हो गया. अब उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी कैटेगरी है वो गैदरिंग शादी के लिए भी हो सकती है,
बर्थडे पार्टी,
बर्थडे पार्टी भी हो सकती है, वर्कशॉप भी हो सकती है,
या
सेमिनार भी, कुछ भी हो सकता है, आपका क्लासरूम भी हो सकता है. तो दैट मीन्स हमने कॉन्सेप्ट बनाया और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारा क्या एक्सपीरियंस है उसकी कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया.
बिल्कुल.
अब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैंने पहले भी कहा, वो हमें हेल्प करते हैं हमारी नॉलेज को यूटिलाइज करने में. अब जब हम यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन में हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं हेल्प करते हैं. अब जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो गया, जनरलाइजेशन मतलब हमने कोई भी कॉन्सेप्ट बनाया और उसको जनरल टर्म्स में सोचा. जैसे कि एक डॉग है, तो डॉग मतलब एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट हो गया कि मैं जो भी छोटा एनिमल देखूंगी, चाहे वो मैं बिल्ली का बच्चा देखूं, डॉग देखूं, या कोई और देखूं, मुझे लगेगा कि ये डॉग ही है. ठीक है, तो ये तो हो गया जनरलाइजेशन. पर धीरे धीरे जब हमारा पेरेंटल हमको वो मिलता है, जैसे पेरेंट्स से गाइडेंस मिलते हैं, पेरेंटल करेक्शन होती है, तो हमें पता चलता है कि नहीं बेटा ये डॉग है, ये कैट है, और ये कोई और एनिमल है, ठीक है, माउस है या कुछ भी है. उसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ऐसे भी होती है, ये डॉग है, ये स्ट्रे डॉग होता है, इसके पास नहीं जाना है, ये पेट डॉग है, इससे प्यार करना है, ये वॉच डॉग है, इससे थोड़ा दूर रहना है. ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने कॉन्सेप्ट बनाया, उसको जनरलाइज किया सबसे पहले, विच इंक्लूड्स ऑल दी सिमिलर लुकिंग कैटेगरीज. ठीक है, और उसके बाद पेरेंटल करेक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करने कर लिया. अब ये तो हुआ कि डिफरेंट, ये तो हुआ जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है. अब जब हम जब भी कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं. एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं. आपने कभी भी वर्ड कॉन्क्रीट याद रखना हो, मैं अपने शिक्षार्थियों के लिए बता रही हूँ, तो आप ऐसे याद रखना जैसे कॉन्क्रीट सीमेंट होता है ना, एक सॉलिड कोई चीज जिसको आप पकड़ सकते हैं. दैट मीन्स आप उस चीज को अपने हाथ से फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और समझ सकते हैं. तो कॉन्क्रीट हमेशा ऐसे, मतलब मैंने जैसे बोला दो कैटेगरीज होगी, एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स हो गए, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हो गए. अब कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे रखा हुआ सोफा, वो एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है. आपके हाथ में बॉल, वो एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है. आपके घर का टेबल, ऐसी चीजें जिनको हम अपने हाथ से टच करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ये तो होते हैं जिनका हम नाम भी दे सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमें उनका मीनिंग निकालना
पड़ता है.
अब अगर मैं बात करूं ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ईमानदार होना, लेकिन क्या आप ईमानदारी को छू सकते हैं? हम ईमानदारी को नहीं छू सकते. उसी तरह से हम लोग
रियलाइज कर सकते
हैं, हम रियलाइज कर सकते हैं कि ईमानदार है,
ईमानदार है,
ठीक है। अब ईमानदारी को हम कैसे समझें? ईमानदारी एक ऐसी चीज है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर ये वाली चीजें किसी भी एक इंडिविजुअल में हैं तो दैट मींस वो एक ईमानदार व्यक्ति है। दैट मींस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जिन्हें हमें समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है, और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करते हैं। इसी तरह से जो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चा जो है वो सबसे पहले क्या सीखेगा? कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वो कोई चीज को हमेशा टच करके ही सीखेगा। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे जब समझ आएगी उसे तो वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का एक उदाहरण जजमेंट भी हो सकता है, एक उदाहरण उसका इंसाफ भी हो सकता है कि इसके साथ जो है इंसाफ हुआ है। अब इंसाफ क्या है, पकड़ोगे आप उसे? नहीं, पर आप समझोगे। तो ये समझने वाली चीजें बच्चे जो है अपने लाइफ में थोड़े टाइम के बाद सीखते हैं, जबकि जो कॉन्क्रीट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं। तो ये तो हो गया कि कॉन्सेप्ट्स क्या चीज, कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये तो हुआ एक कॉम्पोनेंट ऑफ थॉट। अगला जो कॉम्पोनेंट ऑफ थॉट, जैसे कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, वो होता है स्कीमास।
ओके,
अब स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कॉन्सेप्ट से। मतलब जैसे कॉन्सेप्ट तो इजी सा, जैसे हमने समझ लिया कि कॉन्सेप्ट है कि आपका बॉल क्या है और फ्रूट क्या है, ठीक है। लेकिन अब स्कीमास जैसे होते हैं उसमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं और अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट मिल के एक स्कीमा बनाते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात कर रही थी, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि सभी आप अपने बारे में क्या सोचती हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, आप सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं, तो ये आपका
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट,
थैंक यू, ठीक है। तो दैट मींस कि आप में ये तीनों चीजें हैं, तो आपका एक सेल्फ स्कीमा बन गया कि मैं अच्छी भी दिखती हूँ, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ और मैं केपेबल इनफ हूँ अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने के, ठीक है। तो आपका सेल्फ स्कीमा तीन कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करता है। एक कॉन्सेप्ट हो गया अट्रैक्टिव, सुंदर दिखना, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया इंटेलिजेंट,
अकलमंद होना,
और तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया बहादुरी कि आप किसी भी सिचुएशन। अब ये है आपका सेल्फ स्कीमा, तो एक स्कीमा में तीन कॉन्सेप्ट्स हमने इन्वॉल्व कर लिए। तो इसलिए जो स्कीमास हैं वो कॉन्सेप्ट से थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि एक किसी एक स्कीमा को बनने के लिए उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो स्कीमास होते हैं ये हमारा एक मेंटल फ्रेमवर्क है। अब मैं मेंटल फ्रेमवर्क की बात करूं, ये वो मेंटल फ्रेमवर्क है जो हमें थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे सभी जब आप एंकरिंग करने आई तो आप क्यों एंकरिंग करने आई, आपने क्यों सोचा कि मुझे एंकर बनना चाहिए? कोई तो रीजन रहा होगा, आप अच्छा बोलती होंगी, आपका वर्बल आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा रहा होगा। That means कि आपने एक चीज सोची कि मैं अट्रैक्टिव हूँ,
मैं इस दिशा में जा सकती हूँ,
आपने क्यों सोचा मैं इस दिशा में जा सकती हूँ? क्योंकि आप बातचीत करने में अच्छी हैं, ठीक है, आप चीजें याद रख सकती हैं। तो दैट मीन्स आपका जो सेल्फ स्कीमा है, आप अपने बारे में क्या सोचती हैं, उसने आपको हेल्प किया आपका करियर चूज करने में,
गाइडेंस दिया,
उसने आपको गाइडेंस दिया। आपने सोचा कि मैं ये कर, आपने पहले समझा कि मेरे मुझ में ये क्वालिटीज हैं, तो उन क्वालिटीज ने आपको हेल्प किया ये सोचने में कि अच्छा अब अगर मुझ में ये क्वालिटीज हैं तो ये क्या चीज में मुझे सक्सेस दिला सकती है, ठीक है। तो आप एक एंकर, एज एन एंकर यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं सोचती हूँ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, और मैं अच्छी बात भी करती हूँ, तो दैट मींस ये मुझे हेल्प करेगा एप्रोप्रिएट करियर चूज करने में, कि क्या मैं केपेबल हूँ ऑफ बिकमिंग समथिंग बिग इन माई लाइफ। जैसे मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं प्रोफेसर, इंजीनियर, कोई भी ऐसी जो बड़ी चीज है वो मैं कब सोचूं, कब एक्वायर करने की कोशिश कब करूंगी, जब मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा हूँ. दैट मींस ये जो स्कीमास हैं ये ऐसे मेंटल फ्रेमवर्क्स हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन दे रहे हैं.
जी
ठीक है. तो ये है हमारा सेकंड कंपोनेंट ऑफ थॉट. अब एक थर्ड कंपोनेंट ऑफ थॉट होता है जिसे हम कहते हैं मेंटल इमेजरी.
ओके.
अब आप हम सब ऐसा करते हैं. अब मेंटल इमेजिनेशन क्या चीज है? आप अपने घर में शिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर आप अपने घर में सेटिंग चेंज करना चाहते हैं. ठीक है. तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि आप जाते ही सोफे की डायरेक्शन इधर से उधर रख देंगे या टेबल उठा के कहीं और रख देंगे. आप पहले अपने दिमाग में, जिसे हम कहते हैं माइंड्स आई, आप उसमें सोचेंगे कि अगर मैं
इस कहाँ अच्छी लगेगी,
अगर मैं इसको यहाँ से उधर रख दूं और टेबल को इधर से उधर रख दूं, तो दैट मींस आप मेंटली रोटेट कर रहे हैं चीजों को अपने दिमाग में. और जब आपने मेंटली रोटेट कर, आप ये भी ध्यान दे रहे हैं कि कितनी जगह है. अगर मुझे ये अलमीरा को ड्राइंग रूम से हटा के मुझे बेडरूम में रखना है, तो आप ये भी सोच रहे हैं कि इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको इसे बाहर निकालने के लिए स्पेस चाहिए दरवाजे में. अगर स्पेस नहीं है तो आप उसको कैसे मतलब एडजस्ट करेंगे कि वो बाहर निकल जाए, टिल्ट करके निकालेंगे. दैट मीन्स आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि उठा के उसको पहले निकालने लग जाएंगे, क्योंकि आप मेंटली रोटेट करेंगे चीजों. तो इसे कहते हैं कि जब भी हम थॉट प्रोसेस करते हैं, ये थिंकिंग का एक कंपोनेंट है. अब जब भी हम थॉट प्रोसेस करते हैं तो पहले मेंटली चीजों को रोटेट कर देते हैं.
बिल्कुल.
तो इसे कहते हैं मेंटल रोटेशन, जो हम अपने दिमाग की आंख से करते हैं. इट इज नोन एज माइंड्स आई. और कोई भी चीज को सोचने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम उसे पहले करें. और ये भी बहुत ज्यादा हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड
होता है.
फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने पहले कभी शिफ्ट किया होगा और आपने अलमारी जो है वो अपनी अटका दी होगी दरवाजे में, तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होगा कि सीधे उठा के मैं अलमारी रखूंगी तो दरवाजे में अटक गई थी पिछली बार, तो इस बार पहले मैं सोचूंगी. लेकिन हर चीज शुरू कहाँ से होती है? आपके एक्सपीरियंस से. अगर आपको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं है कि शिफ्ट कैसे करना है, तो आप एक्चुअली में अपने हाथ से फिजिकली चीजों को करने की कोशिश करेंगी. वंस आपको एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आप चीजों को करने की कोशिश अपने माइंड
में करते हैं.
तो ये है हमारे बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ थॉट्स. देखिए, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे थॉट प्रोसेस क्या है, थिंकिंग क्या है, और उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, कि जब हम सोचते हैं तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं थिंकिंग. अब थिंकिंग हम करते क्यों हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम टू सॉल्व वन और द अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है. प्रॉब्लम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हो सकती है और रूटीन प्रॉब्लम भी हो सकती है.
बिल्कुल.
प्रॉब्लम है मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है किसी हाउस वाइफ के लिए, वो एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि बिकॉज मेरा 12th अब कंप्लीट हो गया, तो मुझे आगे क्या करियर चूज करना है. तो प्रॉब्लम एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक सिंपल प्रॉब्लम से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हो सकती है, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्चुअली में तीन तरह की स्टेजेस होती हैं. एक होती है इनिशियल स्टेज, एक होती है ऑपरेशन स्टेज, और एक होती है गोल स्टेज. जैसे मैंने बोला इनिशियल स्टेज, उसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है. ठीक है. ताकि मतलब आपके पास कोई प्रॉब्लम है.
हाँ.
वो प्रॉब्लम है क्या बनाऊं, क्या खाऊं, ठीक है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट आगे लूं, तो वो एक प्रारंभिक अवस्था है. दूसरा है कि अब आपने थॉट प्रोसेस किया और जो भी आपने सोचा उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, ऑपरेशन किया. मैंने सोचा कि आज मैं खाने में ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाऊं या मैं परांठा बनाऊं या मैं पोहा बनाऊं. ठीक है. अब जो मैंने सोच लिया तो मैंने एक्शन लिया, ऑपरेशन किया, एक्चुअली में कुछ किया. और लास्ट स्टेज जो होती है वो होता है गोल स्टेज. दैट मींस मैंने ब्रेकफास्ट इज रेडी, जो भी मैंने सोचा वो बना लिया. इसको बहुत एक कॉन्क्रीट प्रॉब्लम के साथ समझने की कोशिश करते हैं. मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ कॉन्क्रीट प्रॉब्लम, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप अंडरस्टैंड करें एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है. अब एक प्रॉब्लम आप सोचिए कि आपको एक अनएक्सपेक्टेड बिल आ गया पे करने के लिए. अनएक्सपेक्टेड बिल कैसे आ गया आपको पे करने के लिए? मान लीजिए आप सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी ने एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए आपके, किस चीज के लिए? कि आपने इस दिन एक सेलिब्रेशन किया था तो उसकी लाइट का खर्चा इतना हो गया उस पर, और उस पर खाने का खर्चा इतना हो गया और एक्स्ट्रा बिल आ गया आपका, तो आप पे आपने आपने जो अपने महीने का बजट प्लान किया था उस प्लानिंग से एक्स्ट्रा कुछ आपको प्लान करने के लिए आ गया, ठीक है, दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड बिल हो गया. अब ये हो गया आपका इनिशियल स्टेज, दैट इज यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ पेइंग समथिंग आउट ऑफ योर पॉकेट जो आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है. अब ये इसका गोल स्टेट क्या है कि हमारे को चाहिए क्या, सॉल्यूशन क्या है, हमें पैसे चाहिए. पर पैसे हम कहाँ से लें? अब पैसे लेने के दो ऑप्शन हो सकते हैं. अब आप सोचोगे कि क्या ऑप्शन हो सकता है. मतलब पहला था आपका इनिशियल स्टेज विच इज अ प्रॉब्लम स्टेट, कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है. अब दूसरा स्टेज है जब आप सोच रहे हो कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकती हूँ. क्या मैं किसी से पैसे उधार मांगू, अपने किसी दोस्त से, या फिर किसी से पैसे उधार मांगने के जगह अच्छा है कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर लूँ, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड बहुत ट्रेंड में है. तो आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा पैसे उधार लेने के लिए, और आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे. तो क्रेडिट कार्ड यूज करना इस केस में ज्यादा अच्छी ऑप्शन है, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू किसी और से पैसे मांगना.
बिल्कुल,
ठीक है. तो दैट मींस आपने ऑपरेशन किया एंड दी सेकंड स्टेज, एंड दैट सेकंड स्टेज इज यू वर एक्चुअली एक्टिंग अपॉन व्हाट यू हैव थॉट अबाउट. ठीक है, कि आपने ये सोचा था कि आपने बिल इस तरह से पे करना है, मुझे क्रेडिट कार्ड से पे करना है बजाय मुझे किसी और से पैसे उधार
की जरूरत पड़े जी.
और आपका गोल स्टेट क्या हुआ कि आपका बिल पे हो गया. तो दैट मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो तीन तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व करती है, विच इज इनिशियल स्टेज एंड देन द ऑपरेशन स्टेज एंड फाइनली द गोल स्टेज. अब देखिए, जैसे मैं पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रही थी कि तीन तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. बेसिकली पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं और वो जनरल भी हो सकती हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, आप कौन से स्टेप्स में जाओगे वो जनरली रहता है कि आप पहले सोचो, आपके पास प्रॉब्लम होगी उसके बारे में सोचोगे और आगे बढ़ोगे. लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक बहुत बड़ा हर्डल होता है जिसे हम कहते हैं मेंटल सेट या फिर आपकी मेंटल रिजिडिटी. अब इसमें एक ना 9 dots प्रॉब्लम आती है, कभी आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं. 9 dots प्रॉब्लम आती है, उसमें क्या आता है कि तीन तीन करके 3 rows में 9 dots दिए हैं. ऐसा कहा जाता है कि बिना अपनी पेंसिल उठाए उन सब डॉट्स को जोड़ना है. तो आप कभी भी सोचिएगा कि हम एक ही तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम कभी कोई दूसरा तरीका ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते नहीं। क्योंकि हमने ये अपने दिमाग में बिठा रखा है, एक मेंटल फिक्सडनेस हो गई है कि ये चीज सिर्फ इसी तरह से सॉर्ट
आउट हो सकती है
और हो ही नहीं सकती कैसे भी. वो कुछ भी है, जैसे कि आपने ताला कैसे खोलना है, चाबी ऐसे ही घुमा के खोलनी होगी और किसी तरह से नहीं होगी. ऐसे हमारी लाइफ में बड़ी बड़ी काफी सारी मेंटल सेट बन जाता है, और ये जो मेंटल सेट होता है ये सबसे बड़ी हर्डल होती है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि हम किसी चीज को सॉल्व करने की कि ऑल्टरनेटिव सोच ही नहीं पाते क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम एक ही तरह की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को सोचते हैं. ठीक है, तो ये होता है मेंटल सेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो विच इज अ हर्डल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग.
बिल्कुल.
अब देखिए, जब भी हम थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो उसमें रीजनिंग का आना जरूरी है. क्योंकि जब हम लोग सोच रहे हैं या हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम किसी तरह का रीजन तो देंगे
जी.
तो जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, मैं बोलूंगी रीजनिंग. अब हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी रीजनिंग की दो टाइप्स की रीजनिंग होती है. एक होता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग और एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग. अगर आप वर्ड पे जाओ डिडक्टिव रीजनिंग, तो डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि आपके पास कुछ दिया गया है, आपके पास कुछ अलग अलग मटेरियल आपके पास पड़ा है और आपको उधर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब आपको ड्रॉ करना है कॉन्क्लूजन. और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है कि आपके पास अलग अलग चीजें पड़ी हैं पर उनको असेंबल करना है और वही आपका सोल्यूशन
है.
ठीक है, अब आपने वो वाली एग्जांपल्स तो बहुत सारे सुने होंगे जिन्हें हम कहते हैं कि assertions या premises, जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये है प्रमाइस. तो इसका सिलॉजिज्म कहते हैं कि इसका मतलब हुआ कि अगर सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, तो दैट मीन्स सभी ए जो हैं वो भी सी हैं. आपने कभी क्वेश्चंस में या कभी कोई टेस्ट देखे होंगे मैगजीन्स में, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है, तो ये कहते हैं रीजनिंग, ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग, आपके पास एक एस्पेक्ट दे रखा है, वो एस्पेक्ट क्या है कि जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो मॉर्टल हैं, सभी ह्यूमन बींग्स को एक दिन मरना है. ठीक है, और जो रमेश है वो एक ह्यूमन है. ठीक है, दैट मींस रमेश भी मॉर्टल है. समझे आप?
बिल्कुल.
पहले आपके पास एक प्रमाइस है कि सभी ह्यूमन बींग्स को एक दिन उनका अंत होगा.
होगा.
ठीक है, रमेश एक ह्यूमन बींग है, ये दो जो हैं वो प्रमाइस हो गए. अब आप इन दोनों को इकट्ठा करके एक कॉन्क्लूजन पे कैसे आएंगे? सब ह्यूमन बींग्स को मरना है, दैट मीन्स रमेश अगर ह्यूमन बींग है तो वो भी मॉर्टल है. सिलॉजिज्म. ठीक है, दैट मीन्स आपके पास कुछ दिया गया था और आपको उसमें से ड्रॉ करना था अपना कंक्लूजन. ये होता है एक तरह की रीजनिंग, और इस रीजनिंग को हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग. अब दूसरी तरह की रीजनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग. अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? अगर मैं इंडक्टिव रीजनिंग की बात करूं तो उसका मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी गई हैं और उनको इकट्ठा करके मुझे कंक्लूजन पे पहुंचना है. अब डिफरेंट सिचुएशंस क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं अपनी कार कीज भूल गई कि मैंने कहाँ रखी थी. ठीक है, तो मैं ये कैसे ढूंढूंगी कि मैंने अपनी कार कीज कैसे रखी थी? अब आप, जब मैं आपको ये बात बताऊंगी, आप अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन इमेजिन करना. हम सबने ये चीज़ करी है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कार पार्क करके ऊपर आई, लिफ्ट से आई, तो मैं लॉक खोल रही थी. जब मैंने लॉक खोला तो मुझे फोन की घंटी सुनाई दे रही थी दूसरे कमरे में, तो मैं फोन की तरफ भागी. उसके बाद फोन पे बात करते करते मुझे याद आया कि कहीं पे मेरा जो है अंदर दरवाजा खुला रह गया, तो मैं वहां भाग गई उसको बंद करने के लिए. ठीक है, इसी तरह से क्या हुआ कि अलग अलग मेरे पास सिचुएशंस हैं, तो मैंने कार कीज एक्चुअली मैं कहाँ रखी, ये प्रॉब्लम है. तो हम अब इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? हम एक वो मेंटल ट्रैवल करेंगे. वो मेंटल ट्रैवल कैसे करेंगे कि जब मैं आई थी उस वक्त, तो मैं सबसे पहले दरवाजा खुला था और फोन की घंटी बजी थी, तो मैं फोन के पास गई थी. उसके बाद मैं दरवाजा बंद करने गई थी. उसके बाद मैं किसी और कमरे में गई थी. उसके बाद मैंने चेंज किया, क्या किया, तो मैं क्या करूंगी कि जब वो मेंटल अपना
स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी,
स्टेप बाय स्टेप, ये यही एक एप्रोप्रिएट इसका आंसर है कि मैं हर चीज पे स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी. दैट मींस मैं अलग अलग अल्टरनेटिव्स इकट्ठा करूंगी, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी, और उसके बाद उन स्टेप्स के बेसिस पे, अलग अलग चीजों के बेसिस पे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आऊंगी. दैट मींस मैंने सब चीजों को इंडक्ट कर दिया, सब चीजों को इकट्ठा करके एक सॉल्यूशन पे पहुंची. तो डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग दोनों ऑपोजिट हैं. एक में क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास सब कुछ दिया है, हमें वहां से कंक्लूजन ड्रॉ करना है, और इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास कुछ नहीं दिया है, हमें सब चीजों को इकट्ठा करके फिर एक कंक्लूजन पे. डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग को हम किस तरह से अपनी लाइफ में, ये अनदर एस्पेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का. अब डिसीजन मेकिंग को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हम बहुत सारे डिसीजन, जो मैं हमेशा से बोल रही हूँ, रूटीन टास्क है खाना क्या बनाना है, क्योंकि वो सबसे बड़ी समस्या है, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए. ठीक है, अब डिसीजंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे, कई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने ये देखा कि कोई आपका जो बहुत क्लोजली आपसे रिलेटेड है, तो उसको जब वो बीमार हो गया, जब आप उसे हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया, तो एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी. अब आप आज के कॉन्टेक्स्ट में इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए. जब एक बार डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी करनी है, तो आप क्या करते हैं, आप सीधे जाके उसकी सर्जरी करवा देंगे? हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डिसीजन लेना है ना, हमें सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी है, क्योंकि 5 मिनट पहले तो इंडिविजुअल ठीक था, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डॉक्टर से राय लेने की कोशिश करेंगे. दैट मींस हमें डिसीजन पे आना है, तो डिसीजन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को सोचेंगे, और जब अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को सोचेंगे तो जिस एक नतीजे पे आएंगे उसे कहेंगे डिसीजन मेकिंग, कि हमने ये डिसीजन
ले लिया.
तो दैट मींस डिसीजन मेकिंग में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किसी एक कंक्लूजन पे आएंगे, एंड दैट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग. अब जैसे हमने एक तो बात करी कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग जो है वो एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, कि आपको जजमेंट देनी है और उस पे कुछ आप किसी चीज पे डिसाइड करोगे और फिर आप अपनी जजमेंट दोगे. अब जजमेंट जो है वो एक्चुअली डिफरेंट किस तरह से, थोड़ी सी कि जजमेंट इन्वॉल्व करती है इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन वाइल डिसीजन रिक्वायर्स चॉइसेस. ठीक है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेना है या दूसरा डिसीजन लेना है, तो इसके लिए चॉइसेस चाहिए. मतलब दैट मींस आपके पास दो चॉइसेस हैं, तो उन चॉइसेस पे आपको जजमेंट देनी है. जैसे मान लीजिए हम किस तरह से डिस्टिंक्शन करते हैं डिसीजन मेकिंग और जजमेंट की, कि एक जज जो है वो क्या करता है कि अलग अलग लोगों की एविडेंसेस के बारे में सुनता है, लॉयर ने क्या कहा, जो सबूत हैं वो क्या कह रहे हैं, और बाकी जो एविडेंसेस पेश हुई वो क्या कह रही हैं, तो दैट मीन्स उनके बेसिस पे वो एक जजमेंट अपनी देगा. ठीक है, दैट मीन्स सबको सुना उसने. लेकिन दूसरी तरफ डिसीजन मेकिंग इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग है दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग. जजमेंट भी एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग भी एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग है. पर डिसीजन मेकिंग इस तरह से जजमेंट से अलग है कि जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपके पास कुछ अल्टरनेटिव दिए गए होते हैं और आपको उन्हें चूज करना होता है. ठीक है, जैसे कि आपके पास दिया है कि आपको एयरपोर्ट किस किस रूट से आप जा सकते हैं, 3 रूट से आप जा सकते हैं, तो आप कौन सा वाला रूट चूज करेंगे, ये एक डिसीजन मेकिंग है. अब ये एग्जांपल से ही क्लियर हो रहा है कि जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में क्या डिफरेंस है. जजमेंट में आपको अलग अलग चीजें हमने बता दी और उनके बेसिस पे आपको एक कंक्लूजन पे आना है. डिसीजन मेकिंग पे आपको जजमेंट देनी है कि ऐसा ही होगा, ऐसा होना चाहिए. और डिसीजन मेकिंग में क्या करना है कि आपको अलग अलग चॉइसेस दी गई हैं और उन चॉइसेस के बेसिस पे आपको जो भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि मैं इस रूट से जाऊंगा तो ये शॉर्टेस्ट रूट है एयरपोर्ट जाने का, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा. तो दैट इज योर डिसीजन मेकिंग, कि आपको डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है. तो ये है हमारा जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. अब देखिए, हम लोग कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे थे थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की. जब हम थिंकिंग, थॉट प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, तो आपने कभी रियलाइज किया होगा कि जब आप सोच रहे हैं तो एक्चुअली में आप अपने दिमाग में बात कर रहे हैं ना. दैट मींस आप किसी तरह की तो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसके बेसिस पे आप सोच रहे हैं. तो थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में लैंग्वेज एंड थॉट की जब हम बात करते हैं, तो पहली बात कि लैंग्वेज के बिना हमारी जो एक तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो किसी तक कम्युनिकेट करना ही बहुत मुश्किल होता है. और वैसे भी वी एज ह्यूमन बींग हम लोग बाकी एनिमल्स से किस तरह से अलग हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है हमारी लैंग्वेज. हम अपने लैंग्वेज के बेसिस पे, अपने एक्सप्रेशन के बेसिस पे, अपने जो बोल सकते हैं उस पर हम इजिली इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी बात सामने वाले के सामने.
और मैम यही एक विशेषता शायद हमें सबसे अलग भी बनाती है, और इंसान बनने का दर्जा ही हमें भाषा के रूप में मिला है,
उसमें मिला
है. हम अपने थॉट्स डेवलप कर सकते हैं, आपस में साझा कर सकते हैं अपने थॉट्स में. भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके जरिए से, जिसके माध्यम से आप अपने थॉट्स आपस में कह सकते हैं कि अदला बदली कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं. और यही एक बहुत विशेष वजह है जो आपको इंसान का दर्जा देती है, आपको जानवर से अलग कैटेगरी में रखती
है. यही एक सबसे इम्पोर्टेंट वजह है. अब जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज डिवेलप कब होती है, बच्चा बहुत पहले से ही जब वो 6-7 महीने का होता है तो उसमें लैंग्वेज डिवेलपमेंट जो होती है वो शुरू हो जाती है. जब वो बच्चा मामा मामा बोलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे जब बच्चा 1.5-2 साल का 3 साल का होता है तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन शुरू करता है. सेंटेंस फॉर्मेशन शुरू करता है. आप देखिए कि लैंग्वेज क्या होती है, कि जब बच्चे में लैंग्वेज नहीं है तभी हम आगे बात करेंगे कि बच्चा अपनी उंगली करके चीज़ों को दिखाने शुरू कर देता है कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, दैट मीन्स लैंग्वेज कहीं ना कहीं डेवलप होने शुरू हो चुकी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोचने का. अब लैंग्वेज इतना इफेक्टिव टूल है कि ये एक ऐसा टूल है जो हमें दूसरे के सामने अपनी बात रखने का, कम्युनिकेट करने का एक बहुत अच्छा जरिया है. बहुत पहले ही हमारी लाइफ में लैंग्वेज जो है वो शुरू हो जाती है. थोड़ा सा हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे कि लैंग्वेज जो है वो किसी भी तरह की सोशल इंटरेक्शंस में हमारे फीलिंग्स को, हमारे मोटिव्स को, हमारे एटीट्यूड्स, बिलीव्स को सामने रखने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं. अब लैंग्वेज हम यूज़ कैसे करते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इसमें कुछ सिम्बल्स होते हैं. वो सिम्बल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आइडियाज़, फॉर एग्जाम्पल, और वही आइडियाज़ हमारे को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ होम की, तो दैट इज अ सिंबल कि अगर कोई इस तरह की दिखती चीज है तो दैट मीन्स वो घर है. कोई इस तरह की दिखती चीज है तो दैट मीन्स वो कोई औजार है. तो हमने हर एक चीज को अपने एक आर्बिट्रेरी सिंबल्स दे रखे हैं. अगर कोई ऐसा पत्ते किसी चीज में लगे हैं, उसमें फ्रूट्स लगे हैं, उसकी स्टेम है, ऐसे बाक है, तो वो एक पेड़ है. तो हमने क्या किया, अपने आर्बिट्रेरी सिंबल्स किसी ना किसी चीज को दे रखे हैं. ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लैंग्वेज का, ठीक है. और ये चीजें जो है हमारे को किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए हेल्प करती है कि अगर सिंबल इस तरह का है तो हम किस तरह से इसके बारे में सोचेंगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस इसमें रहेगा. दूसरा, ये बहुत बार बात होती है कि लैंग्वेज और थॉट कितना रिलेटेड है. क्या अगर किसी में लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है तब भी उसका थॉट प्रोसेस उतना इफेक्टिवली चलता है, या वो किस तरह से रहता है. तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे एक्सप्रेशंस भी डेवलप, जब हमारी लैंग्वेज डेवलप भी नहीं होती, तभी मैं आपको ये कह रही थी कि बच्चा क्या करता है, अपने एक्सप्रेशन से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से और इशारा कर,
इशारों से
साइन लैंग्वेज अपनी बात समझाने की कोशिश करता है. दैट मीन्स ये जरूरी एस्पेक्ट है हमारे थॉट प्रोसेस में. तो इस तरह से जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड रहती है हमारे थॉट प्रोसेस से, और इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग में.